लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओ, व्यक्तिगत उपभोक्तावाद ने वृहद अन्याय को जन्म दिया है। इसकी उपस्थिति में हम अपने शांतिमय अस्तित्व में दूसरे लोगों को सिर्फ बाधा की भांति देखते हैं। हम उनके साथ अपरिचित लोगों की भांति व्यवहार करते और आक्रामक हो जाते हैं। विपत्ति, संकट और कठिन परिस्थितियों में यह और भी तीव्र हो जाती है और हम यह घोषित करने की परीक्षा में पड़ जाते हैं, हर मानव स्वयं के लिए है। यद्यपि उस उपस्थिति में भी हम अपने में विनम्रता के अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं। वे जो ऐसा करते हैं अंधेरे में चमकते तारों की भांति बन जाते हैं। श्रोताओं, संत पौलुस इस विनम्रता को पवित्र आत्मा के फल स्वरूप घोषित करते हैं। वे यूनानी भाषा में इसे क्रिस्तोतेस कहते हैं, जिसका वर्णन एक सभ्य व्यवहार, अच्छा और सहायक आचरण के रूप में किया गया है, न कि असभ्य या कठोर व्यक्तित्व के रूप में। वे लोग जो इस गुण को अपने में धारण करते हैं दूसरे लोगों को अधिक सहनीय बनने में मदद करते हैं, विशेषकर उनकी मुसीबतों, जरूरतों और भयों को अपने में साझा करते हुए। दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार एक अलग रूप धारण करता है, खासकर उदारता के एक कार्य दूसरों की चिंता, जहां हम अपनी सतर्कता में किसी को शब्दों और कार्यों के द्वारा दुख देने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरों के बोझों को कम करने में अपनी ओर से एक तत्परता। यह व्यक्तियों को दूसरों के लिए सांत्वना के शब्दों को व्यक्त करने हेतु प्रेरित करता है, उन्हें धैर्य सहारा देते हुए प्रोत्साहित करता है, न कि दूसरों को नीचा दिखाता, चोट पहुंचाता, क्रोध या उनके प्रति घृणा के भाव व्यक्त करता है। विनम्रता हमें अपनी क्रूरता से मुक्त करती है, जो कभी कभी हमारे मानवीय संबंध को दूषित कर देता है। यह हमें अपनी चिंता से स्वतंत्र करती है, जहां हम दूसरों के लिए सोचने में अपने को बाधित पाते हैं। यह हमें अपने क्रियाकलापों की उन्मत्तता और हड़बड़ाहट से निजात दिलाती है, जहां हम यह भूल जाते हैं कि दूसरों को भी खुश रहने का अधिकार है। वर्तमान परिवेश में हम यह पाते हैं कि हमारे पास ना तो समय है और ना ही शक्ति, जिससे कि हम अपने में थोड़ा रुक कर दूसरों के लिए कोमलता के भाव प्रदर्शित कर सकें और कह सकें, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, आपका धन्यवाद। इन सारी चीजों के बावजूद आश्चर्यजनक रूप में हमारे बीच एक नम्र व्यक्ति प्रकट होता है, जो अपने जीवन की सारी चीजों को किनारे रखता, जिससे वह दूसरों को महत्व दे सके, दूसरों को मुस्कुराहट का एक उपहार दे सके, प्रोत्साहन के शब्द कह सके, उदासीनता से बाहर निकलते हुए दूसरों की बातों को सुन सके। यदि हम अपने दैनिक जीवन में यह करने का प्रयास करते हैं तो हम एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं जो हमारे मध्य से ना समझी और आपसी विवादों को दूर करती है। हमें अपने में विनम्रता का गुण विकसित करने की जरूरत है। यह पूंजीपतियों का छिछला गुण नहीं है, यह खासकर इसलिए कि यह आत्म सम्मान और दूसरों के लिए सम्मान को वहन करता है। विनम्रता जब एक समाज की संस्कृति बन जाती तो यह हमारे जीवन शैली को परिवर्तित करती है। यह हमारे संबंधों और सोचने विचारने, उन पर वाद विवाद करते हुए उनकी तुलना करने से हमें मुक्त करती है। विनम्रता सर्वसहमति की खोज को सुगम बनाती है। यह नए रास्ते खोलती है जहां शत्रुता और संघर्ष सभी पुलों को अपने में भस्म करता है। श्रोताओ, फ्रतल्ली तुत्ती के सातवें अध्याय का शीर्षक मिलन की नई राहें हैं। इस अध्याय के शुरू में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि विश्व के बहुत से भागों में आज हमें शांति के मार्गों की जरूरत है, जिससे घावों की चंगाई हो सके। आज भी हमें शांति के शिल्पकार नर और नारियों की जरूरत है, जो साहस पूर्वक और रचनात्मक रूप से चंगाई और नवीन मिलन की प्रक्रिया को शुरू करने हेतु तैयार हों। नए मिलन का अर्थ अपने में पहले की पुरानी संघर्ष की ओर लौटना नहीं है। हम सभी समय के साथ बदलते हैं। दर्द और संघर्ष हम में परिवर्तन लाते हैं। हम अपने में अब उन खाली कूटनीति, दुष्प्रचार, दो तरफी बातें, छिपे हुए एजेंडा और शिष्टाचार का उपयोग नहीं करते जो सच्चाई को छिपाने वाले होते हैं। जो घोर शत्रु थे उन्हें कटु और स्पष्ट सत्य को बोलना होगा। उन्हें इस बात को सीखना होगा कि कैसे एक पश्चाताप की स्मृति विकसित करनी है, एक जो अतीत को स्वीकार कर सकती हो ताकि भविष्य को वे अपने पश्चाताप समस्याओं और योजनाओं से न ढकें। वे केवल अपने इतिहास की सच्ची घटनाओं पर अपने को आधारित करते हुए दूसरों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो उन्हें सबों के लिए भलाई करने को प्रेरित करेगा। हर शांति की प्रक्रिया अपने में एक निरंतर निष्ठामय कार्य की मांग करती है। यह हमारा धैर्य है जिसके फलस्वरूप हम सच्चाई की खोज करते हुए न्याय के कार्य करते हैं, पीड़ितों की यादों का सम्मान करते और कदम दर कदम नई राहों को खोलते हैं, जहां सशक्त आशाएं हमारे लिए बदले की भावनाओं से अधिक मजबूत होती हैं। कोंगो के धर्माध्यक्षों ने बारंबार होने वाले संघर्ष के संबंध में कहा है, कागजों में शांति के समझौते अपने में काफी नहीं है। हमें निरंतर होने वाली समस्याओं की जड़ों में जाते हुए इसकी सच्चाई का पता लगाकर इसके आगे जाने की जरूरत है। यह लोगों का अधिकार है कि वे इस सत्य को जाने कि क्या हुआ है। श्रोताओ, सत्य वास्तव में न्याय और दया का अविभाज्य साथी है। ये तीनों हमारे लिए आवश्यक हैं, जो एक साथ मिलकर शांति की स्थापना करते हैं। इसमें हर एक दूसरे को परिवर्तित होने से रोकता है। सत्य हमें प्रतिकार हेतु अग्रसर ना करे, बल्कि यह हमें मेल मिलाप करने और क्षमा देने हेतु प्रेरित करे। इसका अर्थ हमारे लिए यह हुआ कि हम दुख में टूटे हुए परिवारों को इस बात से अवगत कराएं कि उनके खोए परिजनों के साथ क्या हुआ है। सत्य का अर्थ यह स्वीकार करना है कि क्रूर और हिंसक लोगों द्वारा कार्य में लाए गए नाबालिगों के साथ क्या हुआ है। सत्य का अर्थ है हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के दर्द को पहचानना। मनुष्य के विरुद्ध किया गया प्रत्येक हिंसा का कार्य मानवता के शरीर में एक घाव है। हर हिंसक मौत हमारे मानवीय सम्मान को नष्ट करता है। हिंसा से अधिक हिंसा उत्पन्न होती है, घृणा से अधिक घृणा, मृत्यु से अधिक मृत्यु होती है। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा जो अपरिहार्य लगता है। श्रोताओं, हमने अपने आज के प्रसारण में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ले तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। हे यीशु मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस का पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स जारी है, जिनकी पिछले रविवार को रोम के जेमेली अस्पताल में एक निर्धारित आंत सर्जरी हुई थी। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि संत पापा फ्रांसिस का पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स नियमित और संतोषजनक बना हुआ है। संत पापा ने नियमित रूप से खाना पीना भी शुरू कर दिया। प्रेस कार्यालय निदेशक कहते हैं, संत पापा की डाइवर्टिकुलिटिस के संकेतों के साथ एक गंभीर डाइवर्टिकुलर स्टेनोसिस की पुष्टि की गई है। अंत में निदेशक ब्रूनी ने बताया कि संत पापा फ्रांसिस इन दिनों प्राप्त कई संदेशों और स्नेह से प्रभावित हैं और उनकी निकटता एवं प्रार्थना के लिए आभार व्यक्त करते हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने सीरो मालाबार कलीसिया के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें अपनी कलीसिया की बेहतरी और एकता के लिए समान तरीके के पवित्र मिस्सा मनाने के लिए आमंत्रित किया है। भारत में सीरो मालाबार केरल की एक पूर्वी कैथोलिक प्रादी धर्माध्यक्ष कलीसिया है। पवित्र मिस्सा को पूर्वी सीरियक आरामी में पवित्र कुर्बाना कहा जाता है, जिसका अर्थ है यूखरिस्त, जो रविवार और विशेष अवसरों पर समारोह मनाया जाता है। 3 जुलाई को अपने पत्र में संत पापा ने 1999 में सीरो मालाबार कलीसिया के धर्माध्यक्षों की धर्मसभा द्वारा सर्वसम्मति से किए गए समझौते को याद किया और इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कलीसिया के भीतर स्थिरता और कलीसियाई एकता को बढ़ावा देने की दिशा में पवित्र कुर्बाना को एक समान तरीके से मनाने के लिए बाद के वर्षों में बार बार समर्थन दिया। उन्होंने लिखा, महान जयंती वर्ष 2000 में इस विकास को लागू करने की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों ने मेरे पूर्ववर्ती संत पापा जॉन पॉल द्वितीय को आपके सुई यूरिस गिरजाघर में खुशी का विश्वास दिलाया। संत पापा ने उल्लेख किया कि कुछ कठिनाइयों के बावजूद जिनके लिए सीरो मालाबार कलीसिया के जीवन में निरंतर समझ की आवश्यकता है, यूखरिस्तीय समारोह के लिए स्वीकृत मानदंडों ने उन जगहों पर विशेष रूप से मिशनरी धर्म प्रांत जहां पूरा समुदाय सुसमाचार प्रचार सहित शांतिपूर्ण और विभिन्न प्रार्थना धर्म विधियों में शामिल होते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया बहुत फलदायी होती है। संत पापा ने लिखा, मैं सिरो मालाबार धर्माध्यक्षों से आग्रह करता हूं कि वे दृढ़ रहें और ईश्वर के लोगों के साथ एक साथ चलने की मैं पुष्टि करता हूं। उन्होंने कहा कि वे न्यू राजा कुर्बाना टक्सा अर्थात नई समारोही मिसा ग्रंथ की मान्यता के अवसर पर सभी पुरोहितों धर्म संघियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे पवित्र कुर्बाना को मनाने की एक समान विधि के कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ें। इस प्रक्रिया को सिरो मालाबार कलीसिया की अधिक भलाई और एकता के लिए आवश्यक बताते हुए संत पापा ने कलीसिया के सभी सदस्यों के बीच सद्भाव, भाईचारे और एकता का आह्वान किया, क्योंकि वे धर्म सभा के फैसले को लागू करने का काम करते हैं। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति के एक पूर्व चैलेंजर को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। विक्टर बाबरिको को कथित वित्तीय गड़बड़ी के लिए दंड मिला, परंतु उनका कहना है कि आरोप राजनीति से प्रेरित है। पूर्व सोवियत राष्ट्र में बदलाव की मांग कर रहे हजारों लोगों के लिए जेल की सजा एक और झटका है। बेलारूस के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बैंकर बाबरिको को रिश्वत लेने और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया। उसे 14 साल की सजा सुनाने के अलावा अदालत ने उस पर लगभग $57 लाख का जुर्माना लगाया, लेकिन बाबरिको का कहना है कि पिछले साल राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुनौती देने से रोकने के लिए आरोपों को लगाया गया है। बाबरिको ने पूर्व में बेलग्राज प्रॉम बैंक पर छापे का नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपराधिक जाँच हुई। वह लुकाशेंको के शीर्ष विरोधियों में से हैं, जिन्हें या तो जेल में डाल दिया गया है या निर्वासन में मजबूर कर दिया गया है। उनकी सजा विरोधियों के लिए एक महत्वपूर्ण निराशा के रूप में आई। हजारों लोग पहले से ही बाबरिको और बेलारूस के राष्ट्रपति के अन्य विरोधियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। गत वर्ष 9 अगस्त को हुए विवादित मतदान के बाद हफ्तों तक सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी रहे। विरोधकर्ताओं को अक्सर पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा जाता था और हजारों को हिरासत में ले लिया जाता था, और जेल नियमों के तहत भारतीय जेसुइट का अंतिम संस्कार किया गया। जेसुइट फादर स्टेन स्वामी का शव, जिनकी 5 जुलाई को मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में कोविड-19 जटिलताओं के बाद मृत्यु हो गई थी, अंतिम संस्कार की मिसा बलिदान के बाद एक सरकारी शमशान में ले जाया गया। हालांकि फादर स्टेन कोविड-19 से मुक्त थे, हमें अदालत ने जेल के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। जेसुइट फादर जोसेफ जेवियर ने 6 जुलाई को अंतिम संस्कार मिसा के अंत में फादर के शरीर का अंतिम संस्कार करने के निर्णय की घोषणा के बाद कहा। फादर जोसेफ ने 7 जुलाई को उका न्यूज को बताया कि फादर स्टेन को 4 जुलाई की शुरुआत में दिल का दौरा पड़ा। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उन्हें कभी होश नहीं आया। 5 जुलाई को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार मिसा के बाद करीब 6:30 बजे फादर स्वामी के शव का इलेक्ट्रिक शमशान में दाह संस्कार किया गया। बेंगलुरु शहर स्थित जेसुइट द्वारा संचालित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के निदेशक फादर जोसेफ अस्पताल में फादर स्टेन के सहयोगी थे। वे मुंबई के जेसुइट प्रोविंस के प्रोविंशियल फादर अरुण डी सूजा के नेतृत्व में अंतिम संस्कार मिसा में शामिल हुए। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण केवल 20 लोग ही मिसा में शामिल हुए। फादर जोसेफ ने कहा कि फादर स्टेन के अवशेष को रांची शहर में ले जाया जाएगा, जहां फादर काम करते थे, और जमशेदपुर शहर भी लाया जाएगा, क्योंकि वे जमशेदपुर प्रोविंस के सदस्य थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।